તારીખ 16/7/1998 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 348 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 273
પ્રશ્ન 348 પાનું 194 શું તેને ભરોસો એમ આવે છે કે આ મારી ચીજના આધારે મને કાયમ શાંતિ સંતોષ નિરાંત અનુભવાશે, ત્યાંથી કોઈ વાર પાછું નહીં ફરવું પડે એવી પ્રતીતિ શું આવી શકે? શું કહે છે? प्रश्न वो किया है कि जीव को अपना आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, ऐसा कोई आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस उत्पन्न होता है क्या कि मेरी चीज, मेरी वस्तु, मेरी आत्मा, उसके आधार से हमको भविष्य के लिए सुख शांति या स्थाई शांति, स्थाई संतोष और स्थाई आराम का अनुभव होगा, ऐसा कोई आत्मविश्वास क्या जीव को आ सकता है अपने आप? और वो स्थाई, ऐसा स्थाई कि फिर कभी वहां से लौटना नहीं पड़ेगा, ऐसी प्रतीति, प्रतीति को प्रतीति कहते हैं ना, प्रतीति में तो समझते हैं, ऐसा विश्वास, ऐसी प्रतीति, हमारे गुजराती में बोलते हैं ऐसी खात्री, खात्री थी जाए एम के पोता ने, ऐसा आ सकता है क्या? ऐसा प्रश्न किया है किसको? जो इस आत्म उन्नति के मार्ग में प्रवेश करना चाहता है, जिसको आत्म शांति चाहिए और उसी के खोज में जो इस मार्ग में प्रवेश करके खोज करता है, उनको ऐसा विश्वास आ सकता है क्या? क्या ये प्रश्न कहाँ से उठा कि अभी तक विश्वास नहीं आया है? जिसको अभी तक विश्वास नहीं आया, उनको ये प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा होगा? क्या विश्वास आ जाएगा? क्या ऐसा बनेगा? क्या ऐसा प्रश्न करते हैं? क्यों? कि अगर विश्वास नहीं आता है तो इस प्रवृत्ति में टिकना मुश्किल हो जाता है, टिक नहीं पाते, और फिर के उधर उधर दूसरी प्रवृत्ति में, संसार के कार्यों में मनुष्य लग जाता है। जिसको विश्वास आता है, अंदर से विश्वास आ जाता है, वो आगे बढ़ता है और वो आगे बढ़कर के आत्म शांति को अवश्य प्राप्त करता है, स्थाई आत्म शांति को और संतोष को प्राप्त कर लेता है। अंदर से विश्वास आने का तो बहुत बहुत अंदर का भी कारण है, कभी बाहर का भी कारण है, बहुत मुद्दे हैं वहां पे। लेकिन उसमें मुख्य बात जो है, कॉमन बात है, वो है कि इन सब बातों सुन करके जो अंदर में मिलान करता है, तो उनको पता चलता है कि मेरी उल्टी बात भी ये लोग समझते हैं, तो मेरी उल्टी बात भी वो लोग समझ करके ही बताते हैं। किस तरह से मिलान करना चाहिए कि मेरे जो उल्टे परिणाम हैं, आकुलता के परिणाम हैं, दुख के परिणाम हैं, इसके कारण कार्य को जो बराबर समझते हैं, समझाते हैं, समझ करके, मैं नहीं समझता लेकिन मेरी बात वो समझ करके मुझे समझाते हैं और मैं मिलान करता हूँ तो बराबर लगता है, तो वहाँ से विश्वास आना चालू होता है। मतलब वो है कि खुद को असमाधान के कारण से आकुलता होती है। आकुलता क्यों होती है? समाधान नहीं होता है तब होती है, और जब समाधान होता है तब ये बात समझ में आती है कि बात तो ठीक है, मेरी समझ में नहीं आई लेकिन इसका समाधान इस प्रकार से अवश्य है। जैसे एक दृष्टांत ले लेवे कि किसी को भय होता है, भय प्रकृति होती है ना, संसार के सभी प्राणी को किसी को कहीं प्रकार से, किसी को कहीं ना कहीं प्रकार से भय होता ही है, होता है कि नहीं? अब हमारा सिद्धांत क्या बोलता है कि जहां ममत्व है वहां भय है। भय क्यों हुआ? खुद को पता नहीं है, उसको उतना ही चाहिए कि मुझे भय नहीं होना चाहिए क्योंकि भय में मुझे दुख होता है, मैं घबराता हूँ, मुझे भय नहीं चाहिए। तो हमारा समाधान कैसे आता है कि जहां ममत्व है वहां ही भय है। जैसे शरीर के प्रति ममत्व है तो शरीर संबंधित भय होगा कि मेरे को कोई ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा, मैं मर नहीं जाऊंगा, मैं जिंदा रहूं कि नहीं हूं, मृत्यु का भय, कहीं पीड़ा का भय, एक्सीडेंट का भय, कई प्रकार का भय। हाँ, संपत्ति है तो अपनी संपत्ति का भय लगता है, पड़ोस वालों के भय नहीं लगता है कि कोई मेरे चोरी कर जाएगा, मेरे लूट जाएगा, कहीं मेरा गवाना नहीं हो जाए, कहीं फायर नहीं लग जाए, आग नहीं लग जाए, वो नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। तो कहाँ भय हुआ? जहाँ ममत्व है वहाँ भय है, भय है वहाँ दुख है। तो जो अंदर में मिलान करता है कि मेरे को ऐसा होता है कि नहीं होता है, ममत्व हुआ कि नहीं हुआ, मेरा अपना हुआ कि नहीं हुआ, तो हुआ। तो जहाँ ममत्व है वहाँ भय है, वहाँ आकुलता है, दुख है, वो बात मिलान से समझी जाती है, समाधान आता है, तो विश्वास आने लगता है। विश्वास आने का एक ही कारण है कि सही समाधान हुए तो विश्वास आए, सही समाधान नहीं हुए तो विश्वास नहीं आए। और सही समाधान होने के लिए मिलान करना जरूरी होता है, अपने अनुभव से मिलान करते जाए, यही इसकी समाधान करने की पद्धति है। कोई रीति से समाधान करे तो समाधान आएगा और विश्वास भी आएगा। तो समाधान वही, समाधान में वही बात क्या है कि हाँ ऐसी प्रतीति आनी चाहिए, आती भी है और आनी भी चाहिए कि यह नायक ही सत्यार्थ रूप है। वो आत्मा के विषय में लिया है क्योंकि यहाँ तो प्रश्न वो है कि स्थाई शांति, स्थाई आराम दूसरी बात वो भी है कि जीव को दुख तो अनेक प्रकार का है, दुख का एक प्रकार नहीं है, अनेक प्रकार का दुख है। उसमें सबसे ज्यादा दुख टेंशन का है, तनाव, और टेंशन सभी संसारी प्राणी को है ही क्योंकि उसके पास ज्ञान, समाधान रूप ज्ञान नहीं है उनके पास, या वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है। आत्मा चैतन्य पदार्थ खुद स्वयं और दूसरा परमाणु संयोग और दूसरे जीव, उनका विज्ञान क्या है, आपस में एक्शन रिएक्शन का साइंस क्या है, वो समझ में नहीं है। तो समझ में नहीं है तो समाधान नहीं है, समाधान नहीं है तो आकुलता होगी ही होगी, और इसकी कोई दवाई, कोई इलाज, कोई ट्रीटमेंट लौकिक ज्ञान में, लौकिक ग्रंथों में, लौकिक विज्ञान में नहीं है। वो एक अलौकिक ज्ञान है जो सनातन दिगंबर जैन दर्शन में ही है, और जगह नहीं है। इसलिए हमारा ये सौभाग्य है कि ये चीज हमारे घर में है। हम लोगों को ढूंढना पड़ा था, पहले तो हमने हमारे संप्रदाय में, हमारे वेदांत दर्शन में ढूंढा, नहीं मिला। कहाँ है वो पता नहीं है। सबको ये होता है कि हमारे में भी होना चाहिए, लेकिन मिलता नहीं है तो क्या करें। और कई जगह है तो पता नहीं है, हमको पता नहीं था कि जैन दर्शन में है क्या नहीं है। ये तो एक एक्सीडेंट हो गया, इधर आ गया, कोई हुनर अच्छी हो गई। तो ये तो परिश्रम, दूसरे लोगों को तो परिश्रम करना पड़ता है, मिले भी नहीं भी मिले। जबकि जो जैनी हैं और प्राय दरकार नहीं करते हैं क्या इनके घर में है क्या है, जो जैनी है बहुभाग दरकार नहीं करते इनके घर में है। हम जर्मनी में एक रमेश जैन के वहां गए थे, वो दक्षिण में गए तो वो मूड बिद्री में चारुकीर्ति जी हैं, अब शांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। वो चारुकीर्ति जी ने कुछ शास्त्र हमको बताए, पुराने में बहुत शास्त्र है, तो हमको दर्शन करे कि जिनवाणी का दर्शन करो। उस सिलसिले में बात चली कि हम लोग भी कोई शास्त्र की खोज के लिए जर्मनी जाने वाले हैं, दो चार महीने के बाद मई जून में जाएंगे। हम वहाँ दिसंबर में थे। उन्होंने बोला कि अच्छा, हम जर्मनी जाके आए हैं, वहाँ एक रमेश जैन करके हैं, इसका एड्रेस लिखा है, टेलीफोन नंबर लिखा है, उनकी डायरी में सब था, डायरी में निकाल करके सब दिया हमको। अब उसको मिलिएगा और वो आपको, कोई आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो कोई मदद करेंगे। हम गए थे उनको, आदमी तो सोशल वर्कर है, खास करके विश्व हिंदू परिषद का जर्मनी का प्रेसिडेंट है, और इंडिया में अभी ये लोग आ गए हैं सत्ता पर, तो उनका थोड़ा वो भी अच्छा है कि चलो हम लोग सक्सेस हो गए। तो उसने अपने अनुभव की बात की, वो भी दिगंबर जैन था, जैन तो वहाँ जैन मैंने दिगंबर ही जैन है। तो वो बोले कि हमारे जैन लोग, आप इधर आ गए कैसे आ गए, वहाँ इंडिया में शास्त्र पढ़े इसकी कोई दरकार नहीं करते, तो जर्मनी में पढ़े हुए शास्त्र की कौन दरकार करेंगे, अजैन करेंगे जैन नहीं करेंगे। तो उनको मालूम नहीं था कि हम बाई बर्थ अजैन हैं। तो उसने ऐसा ही बोल दिया कि हमारे जैनियों को तो दरकार है ही नहीं, हम अच्छी तरह जानते हैं, जो तो दरकार करेंगे ना वो अजैन लोग करेंगे, उनको उनको पता है कि कितनी मूल्यवान चीज है ये, ऐसा करके बोला। फिर हमने बोला कि हम बाई बर्थ तो अजय ही नहीं है, तो क्या अच्छा ऐसी बात है, उनको अपना स्टेटमेंट राइट निकला। काफी घंटा दो घंटा बात चली थी, फिर हमको तो काफी काम हो चुका था, हम मिले क्योंकि हमारा एड्रेस वेड्रेस उनका वो ब्रीफ चुरा गया हमारा, तो उसमें चला गया था, तो हमको पता नहीं मिला। फिर हमारा डायरी में एक दूसरा एड्रेस था, वो रह गया था अजीत कुमार जी का, उसको हमने पूछा तो उसने बोला कि उसका वो एड्रेस है, वो टेलीफोन नंबर है, आप उसको तो फिर मिल लेना। आदमी काफी और उसका एक चिट्ठी आ गया था, फैक्स कलकत्ता आ गया था, कलकत्ता से एंटवर्प आया था उसका फैक्स। तो उसमें वो बात थी कि आप हमारे घर ठहर सकते हो, 3-4 आदमी की जगह है हमारे घर में, ठहर सकते हो, और आपको काम के लिए बाहर जाना हो तो आप खाना बना हम बना करके देंगे, आप ले जाना और अपना काम अच्छी तरह करिएगा। वो सब पहले बात बताई थी। वहाँ तक उसका रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया था, इसलिए एक दफे तो मिलने का विचार आ गया था। डायमंड का बिजनेस करता है, संपन्न आदमी है, तो एक दफे तो मिल लिया उनको, कोई बातें चली, उसमें वो बात किया था कि जैनी के घर में होने पर भी हमारे जैन लोग दरकार नहीं करते। विश्व में जिसका इलाज नहीं है, जिस टेंशन का इलाज नहीं है, सर्वांग समाधान मिले ऐसा तत्वज्ञान और ऐसी अनुभूति जहां से हो सकती है, ऐसी अमूल्य चीज जो विश्व में कहीं नहीं है वो इधर पड़ी है। तो कहते हैं कि जो आत्मा है वही सर्वांग समाधान स्वरूप है। जिसको आत्मा का अनुभव होता है, आत्मज्ञान होता है, उनको कहीं भी कभी भी असमाधान और दुखी होने की बारी नहीं आते। एक जगत की सर्वोत्कृष्ट अलौकिक उपलब्धि है और उसकी पूरी शक्यता हमारे लिए है कि हम उस उपलब्धि को उपलब्ध कर सकते हैं। एक पूरी पूरी संभावना है अगर कोशिश करे तो, वो भी प्रामाणिकता से कोशिश करे तो, उतनी शर्त है। कल्याण रूप है आत्मा, सत्यार्थ रूप है, कल्याण रूप है तथा अनुभवने योग्य है। उसमें ही तृप्ति एवं आनंद होगा, तृप्ति भी मिलेगी और ऐसा आनंद होगा कि जिसका अनुभव से तुझे कहीं भी पूछना नहीं पड़ेगा। नीचे समय सार में आता है ना, ऐसा करके समय सार की 206 नंबर की गाथा यहाँ उदाहरण की है और उस गाथा की टीका करते हुए अमृतचंद्राचार्य ने लिखा है कि माँ अन्यान प्राक्षी, तुम दूसरे को नहीं पूछेगा, दूसरे को प्रश्न पूछने का तुम्हारी परिस्थिति नहीं रहेगी, तुमको आनंद ही ऐसा आएगा कि आनंद के विषय में तुम सुखी हो गया हो वो तुमको पूछना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे अनुभव में ये बता जाएगी। तो ये तीन पद इसमें लिया है, सत्यार्थ रूप है, कल्याण रूप है और अनुभवन करने योग्य है। ये तीन बात इस गाथा में लिखी है, इस गाथा की टीका में भी लिखी है। इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें मैंने अपने आत्मा में रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे, इसमें ही बन तू तृप्त, उत्तम सुख हो जिससे तुझे उत्तम मैंने अलौकिक सुख होगा और वो सुख हुआ कि नहीं हुआ इस विषय में तुमको पूछना नहीं पड़ेगा। जिसमें से तृप्ति होगी, जिसमें से बाहर निकलने का मन नहीं हो, तृप्ति कैसे होगी, यहाँ से छूटने का मन नहीं होगा, ऐसे तृप्त स्वरूप संतोष स्वरूप आत्मा को ग्रहण कर, आत्मा का अनुभव कर। बिना किसी दूसरे सुख साधन तुमको सुख होगा। और उसका जीवंत दृष्टांत हमारे मुनिराज है, दिगंबर मुनि। देखो, कोई सुख के साधन है, लौकिक साधन है इसके पास, फिर भी वो हमारे से ज्यादा सुखी है। एगंत सुही मुनि वितरागी, वितरागी मुनि है वही जगत में अकेला सुखी है। इतना सुख इंद्र को भी नहीं है, राजा महाराजा और श्रेष्ठ श्रीमंत किसी को नहीं है। जगत का प्राणी मनुष्य तो सुख के साधन बिना सुख मिल सकता है इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। कैसे हो सकता है? भूख लगे तब खाना चाहिए, तृषा लगे तब पानी चाहिए, श्वासोश्वास के लिए हवा चाहिए, जीने के लिए और सुख चैन से आराम से जीने के लिए बहुत सी चीज वस्तुएं की जरूरत पड़ती है। गुजराती में पहला कहवत थी तावड़ी तेरवाना मागे, तो बहुत ओछी जरूरियात थी त्यारे। अत्यारे तो रसोड़ा में तावड़ी तेरवाना नहीं, 1300 मागे एवी चीज छे। फिर भी कृपालु देव ने एक दृष्टांत दे दिया कि देखो, नींद आती है तो जीव पलंग में सोया है या जमीन पे बिना बिस्तर सोया है पता नहीं चलता। बिस्तर और बिना बिस्तर सोने वाले को नींद का सुख तो एक सा ही है। बिस्तर पर कोई अधिक नींद आती है, अच्छी नींद आती है, ऐसी बात तो है। नींद आती है तो बैठे बैठे सो जाते हैं, और टेंशन में हो तो कितनी भी सहूलियत हो, सुख साधन हो, नींद नहीं आती। बिना साधन नींद का सुख ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? कि ले सकते हैं। तो सिद्धांत तो ये सिद्ध हो गया कि सुख के लिए साधन की जरूरत नहीं है। ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये पसंदगी के नखरे कहाँ है कि जहाँ सुख का कैसे सुख मिलता है उसका ज्ञान नहीं है वहाँ है। वास्तविक सुख तो विश्व के बुद्धिमान और सबसे बुद्धिमान मनुष्य हो उसने भी सुख को मटेरियलाइज नहीं किया। सुख को मटेरियलाइज नहीं किया, वो भी एक जगह सुख लेता है भ्रांति से, पूरा सुख मिलता नहीं है और जगह जाता है, यहाँ सुख नहीं मिलता है तीसरी जगह जाता है, यहाँ इधर सुख नहीं मिलता है और जगह जाता है। सुख के लिए भटकता है, फिर भी अनंत काल से भटकने वाले प्राणी को अभी तक सुख नहीं मिला, क्योंकि सुख के विषय में जो भ्रांति है वो भ्रांति छुड़े बिना वो सुख मिलने वाला नहीं है। क्या कहते हैं देखो, वही बात करते हैं कि तू सब बाहर खोजता है, सुख को भी तुम कहाँ खोजते हो? बाहर इधर उधर खोजते हो, परंतु भीतर में से सर्वस्व प्रकट होगा, पूरा सुख सर्वस्व, सुख चैन शांति आनंद ज्ञान सब भीतर में से ही प्रकट होगा। और वो विज्ञान जगत में नहीं है, वो साइंस जगत में नहीं है, उसका गणित उसका कैलकुलेशन भी जगत में नहीं है। तुझे आनंद या ज्ञान के लिए बाहर व्यर्थ भटकना नहीं पड़ेगा। जब तुमको वैचारिक भूमिका में भी विश्वास आएगा कि हमारे महान तीर्थंकरों ने और हमारे महान आचार्यों ने श्री गुरुओं ने ये बात कही है, वो अपने अनुभव से कही है, वो परमानंद में परम सुखी हो गए हैं और हमको सुखी होने के रास्ता भी बताते गए हैं, दिखाते गए हैं, हमको विश्वास आ गया तो बात अलग है, विश्वास नहीं आया तो बात अलग है। मुद्दा जो चल रहा है, प्रश्न चल रहा है विश्वास का। एक महत्वपूर्ण बात है, विश्वास न आए तो टिकना मुश्किल हो जाएगा, विश्वास आएगा तो टिक करके आगे बढ़ेगा। अब सवाल ये कि विश्वास कैसे आए, तो पहली बात वो है कि कहने वाले हमारे तीर्थंकर श्री गुरु विश्वसनीय है कि नहीं है, हमारे शास्त्रीय परिभाषा में उसको आप्त पुरुष कहे हैं। कैसे कहे हैं? आप्त पुरुष। आप्त मैंने विश्वास रखने योग्य, उसका लिटरल मीनिंग वो होता है, शब्दार्थ वो होता है विश्वसनीय, उसको आप्त कहते हैं। विश्वास किस पर रखा जाता है? ये जो प्रमाणिक है, निर्दोष है, पवित्र है, उसी पर विश्वास रखा जाता है। तो देखो हमारे तीर्थंकर, हमारे निग्रंथ गुरु, वो कैसे कितने पवित्र थे, कितने प्रमाणिक थे, कितने निर्दोष थे, वो देख लो, है कि नहीं है। जिसको तिलतुष मात्र परिग्रह नहीं है, उनको कोई निजी स्वार्थ तो होता ही नहीं। जिसको तिलतुष मात्र परिग्रह नहीं है उसको तो कोई निजी स्वार्थ तो होता नहीं, पर निजी स्वार्थ होता नहीं तो उसको पर शंका करने की कोई गुंजाइश नहीं है, अवकाश ही नहीं रहता कि शंका करें। तो पहले तो पुरुष प्रमाण, वचन प्रमाण, पहले तो वो देखना पड़ता है। विश्वास आने का बाहर में यही एक कारण है कि पुरुष प्रमाण है क्या, प्रमाणिक पुरुष है क्या, एक बात। दूसरा, अपने अनुभव को देखें कि हमारे सुख दुख की बात हम नहीं समझते हैं उतनी वो लोग समझते हैं, तो इसका मतलब कि वो सही बात करते हैं। तो हमारे अनुभव से भी विश्वास आता है और हमारा असमाधान का टेंशन को मिटाते हैं और विश्वास आता है, हमारी समस्या को वो समाधान दे देते हैं। जब समस्या का समाधान मिलता है तो विश्वास आने का कारण बनता है। तो जिसको विश्वास आता है वो इस बात को पढ़ करके इसी में आगे बढ़ने का प्रयास अवश्य करेगा। ये विश्वास आने का कारण। आपका प्रश्न था विश्वास के विषय में, विश्वास नहीं आता है, दो बात है कि जिन्होंने ये तत्वज्ञान का प्रतिपादन किया है वो हमारे तीर्थंकर आदि वीतरागी महात्माओं थे, हमको अविश्वास करने का कोई कारण वहाँ मिलता ही नहीं है, ढूंढे तो भी नहीं मिलेगा, ऐसे लोग थे वो, है कि नहीं? तो सबसे पहली वो बात। हाँ, अन्य मत ऐसा कहे कि हमारे भगवान तो ऐसे हैं, लेकिन जो बाय बर्थ जैन है उनको तो अपने तीर्थंकर के प्रति तो आस्था होती ही है। भगवान महावीर से लेकर के जितने भी आदिनाथ भगवान तक के जितने भी पूर्व में तीर्थंकर हो गए, ओक संगना वाले भी शांतिनाथ शांति के दाता है ऐसे मानते कि नहीं मानते हैं? मतलब तीर्थंकर में की बात हम नहीं मानेंगे, वो बात वो जैन संप्रदाय में जन्म लेने वाले को नहीं होती, क्योंकि उतना तो वो आस्था लेकर के हम उसका जन्म मां हुआ है, जैन कुल में जन्म हुआ है भाई, वो भी उसका भी एक कारण है उसका, तो उनको वो आस्था बनानी नहीं पड़ती कि तीर्थंकर भी झूठे हो सकते हैं, वो शंका उसको नहीं होगी। तीर्थंकर बात खत्म हो गई, हमारे परमेश्वर हमारे भगवान है, भले स्वरूप नहीं जाने लेकिन जिन मंदिर में जाएगा भगवान की बात है, तीर्थंकर देव की बात तो खत्म हो गई, जिनेश्वर देव मैंने जिनेश्वर। अगर नहीं, जिसको दुख है संसार में, उलझन है और उसको मिटाना है, उसके लिए तीर्थंकर पर शंका करने का जैन को वो नहीं बनेगा, क्योंकि उतना तो वो लेकर के आया है, उतना संस्कार लेकर के वो जैन हुआ है। हम लोग ऐसे विचारते थे कि श्री कृष्ण कहे या श्री महावीर कहे, किसकी बात सत्य है हमको तो थोड़ा परीक्षा करके नक्कल करना पड़ेगा। श्री कृष्ण की बात पढ़ी सुने समाधान नहीं हुआ, महावीर की बात पढ़ते हैं तो कुछ ठीक लगता है, लेकिन सही है इसके लिए तो कुछ हमको भी कोई कसौटी पर कस करके पक्का करना होगा, ऐसा हम सोचते थे उस वक्त। क्यों? कि भगवद गीता है वो श्री कृष्ण के नाम से लिखी गई है, श्री कृष्ण उवाच ऐसा करके बोलते हैं। अर्जुन प्रश्न करता है तो श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, तो श्री कृष्ण उवाच ऐसा करके फिर श्लोक आता है। और जैनों में भी ऐसा कहते हैं कि महावीर ऐसा कहते हैं। अब दोनों को हजारों साल हो गई, किसी और ने इसके नाम से लिख दिया, वो हमको क्या पता चले कि ये बात एडल्ट्रेटेड है, उसमें कोई मिलावट हो गई है, हमको क्या पता चले। तो हम तो पहले से ही शंका से देखते थे, परीक्षा प्रधानी थे तो शंका से देखते थे, कैसे नहीं, हमारे अनुभव की कसौटी पे जो बात खरी उतरे वो खरी, वो सत्य, ऐसा करना पड़ता था, तो प्रयोग में जाना होता था, सब शुरू से ही प्रयोग पद्धति में आ गया उस तरह से। ज्ञान हाँ, ज्ञान तो भीतर से आता है, वो तो है ही। और वो तो कहते हैं कि तुझे आनंद और ज्ञान के लिए बाहर व्यर्थ भटकना नहीं पड़ेगा, वो तो कहते हैं। तो ऐसे निर्दोष महात्माओं की बातों पर विश्वास रख करके हम हमारे अनुभव की कसौटी पर उसको कसे, बात खरी निकलेगी ही, क्योंकि वो अनुभव सिद्ध बात करते हैं, बात खरी निकलेगी तो विश्वास आ ही जाएगा। तो प्रयोग कर लीजिए, वो बात चली थी कि विश्वास नहीं आता है, तो आप तो जैनी है ही, तो तीर्थंकर पर तो शंका करोगे नहीं। करोगे कि आती है तीर्थंकर पर शंका आती है कि तीर्थंकर की बात सही होगी या नहीं होगी, कि वो तो शंका नहीं होगी, आप होती है क्या बताओ, थाई से शंका थाई से हैं कि तीर्थंकर पर भूल करी सके के खोटू करी सके के नहीं आवे, लगभग इतना संस्कार लेना आवे। હવે વાત રહી પોતાના અનુભવ સાથે મેળવવાની, મેળવી જુઓ, વિશ્વાસ આવવા માંડશે। જ્યાં જ્યાં તમને અસમાધાન હોય ત્યાં ત્યાં તમે અંદરમાં મેળવણી કરી લ્યો, મેંઢવી લ્યો, સમાધાન આવી જશે અને વિશ્વાસ પણ ઉત્પન્ન થઈ જશે। यहाँ तो आत्मा का प्रकरण चलता है, तो आत्मा के प्रकरण में तो क्या है कि आत्मा खुद ही आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है, सर्वांग समाधान स्वरूप है, बताते हैं। कब ये होगा कि अंतर दृष्टि होने पर, कब होगा अंतर दृष्टि होने पर होगा, आनंद होगा, शांति होगी, सर्वांग समाधान आएगा। अंतर्दृष्टि होने पर आनंद अपने आप स्वयं परिणमित होंगे, ज्ञान आनंद आदि सभी गुण अपने आप स्वयं परिणमित होंगे। अंतर्दृष्टि मैंने क्या कि अपना जो मूल स्वरूप अंतरंग में है उसका अस्तित्व ग्रहण होवे, उसको कहते हैं अंतर्दृष्टि। जैसा अपना स्वरूप है ऐसा अंतर अनुभव में आए, तभी अंतर्दृष्टि होती है। वो अनुभव और वो दृष्टि के लिए ज्ञानियों ने इसका प्रोसेस बताया है, वो प्रोसेस पर हमें आगे बढ़ना होगा। और प्रोसेस भी ऐसा है कि आप उसी प्रयोग में प्रवेश करोगे, आपको विश्वास आना चालू हो जाएगा। आनंद का अनुभव तो बाद में होगा, लेकिन विश्वास तो शुरू से ही आने लगेगा। ऐसी व्यवस्था और ऐसी कार्य पद्धति अनुभव सिद्ध बताई है, दिखाई है, स्थापित की है, जिसमें कोई कथन नहीं है, कोई थकान नहीं है, जिसमें कोई थकान नहीं है। देखो, आत्मा की स्वाभाविक शांति, स्वाभाविक सुख और स्वाभाविक आनंद में कोई थकान नहीं आती। नमो सिद्धानम, हमारे सिद्ध परमात्मा सादी अनंत अनंत आनंद में विराजमान है, वहां शरीर भी नहीं और शरीर के सुख साधन भी नहीं है, अशरीरी परमात्मा है, परमानंद में विराजमान है और कभी थकते नहीं, अनंत काल तक थकने वाले भी नहीं। जहां से अमृतमयी परम शांति मिलती रहे, उसका आस्वादन होता रहे, वहां से निकलना किसको गमे, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए वो हमेशा उसमें विराजमान, अपने सुख शांति में, सुख शांति के समुद्र में डूबे हुए रहते हैं। और जीव का अभिप्राय भी, सभी जीव का अभिप्राय भी ऐसा है कि हमको ऐसी स्थाई सुख शांति मिले, जिस सुख शांति के मिलने के बाद हमको कहीं भटकना नहीं पड़े। जिसमें कोई थकान नहीं है, कष्ट नहीं है, थकान भी नहीं, कष्ट भी नहीं है, ऐसा आत्मा सहज ही प्रकट रूप से परिणमित होगा। हम तो हिंदी में आत्मा छे स्त्रीलिंग छे, पर गुजराती नु हिंदी करियो छे ने એટલે ચાલે। हिंदी में तो एम बोले, ऐसी आत्मा सहज रूप से परिणमित होगी, एम बोले। जब को आत्मा को हिंदी भाषा में स्त्रीलिंग दिया है वो हमको पसंद नहीं है। क्यों? वो तो अनंत वीर्य से भरा हुआ है। आत्मा एक ऐसा पदार्थ है कि जो अनंत वीर्य से भरा पड़ा है, तो उसका उच्चारण भी स्त्रीलिंग से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ के पुरुषार्थ तो पुरुषार्थ है। वो तो पर्याय सभी स्त्रीलिंग है, वो तो सभी पर्याय पुरुषार्थ की पर्याय भी पर्याय तो स्त्रीलिंग ही है। बात तो स्वभाव सामर्थ्य की चलती है, ऐसा लिया। कष्ट नहीं है ऐसा आत्मा सहज ही प्रकट रूप से परिणमित होगा, होगी नहीं होगा ऐसा। किंतु प्रारंभिक भूमिका में पलटा खाने में मुश्किल पड़ती है और कठिन लगता है। वो भी बता दिया कि ऐसा सुख शांति मिलती है, फिर भी शुरुआत करने वाले को पलटा खाना पड़ता है और उसमें उसको दिक्कत होती है, उसकी कठिनाई लगती है। वो बात ज्ञानियों के ज्ञान में है। शुरू शुरू में सबको वो कठिनाई और मुश्किली के सामना करना पड़ता है। क्यों? कि हमारी रुचि हमेशा संसार सुख की रही, संसार के साधन प्रसाद में ही हमको सुख मालूम पड़ता है, अनुभव होता है। और ज्ञानी कहते हैं कि वहाँ दुख है, सुख नहीं है। वो पलटा खाने में कठिनाई होती है। हाँ, इतने सुख है शुरुआत वाला ने आकरू पड़े से, एम कैसे कठिन लगे से। बाकी यथार्थ विचार दशा में आए तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कठिन पड़े, लेकिन एक भूमिका आएगी। हमारे विपरीत भावों से हमको लड़ना पड़ेगा। एक भूमिका अंदर में अपने भावों के साथ लड़ाई में जाने की, फ्रिक्शन में आने की होगी। उसमें जो जीत गया वो जीत गया और हार गया वो हार गया। एक एक दफे तो वो बात, विवेक मल ताकत वाला है ज्ञान। ज्ञान में जो विवेक होता है उसको विवेक मल कहते हैं, और अनादि का अज्ञान और मिथ्यात्व है उसमें भी उल्टी ताकत है, जिसको ज्ञानी कहते हैं अविवेक मल। विवेक मल और अविवेक मल की लड़ाई होती है भीतर में, और विवेक मल की जीत होती है। जब अविवेक मल की जीत होती है फिर प्राणी संसार के परिभ्रमण में दुख में चला जाता है, दुखी हो जाता है। जब विवेक मल की जीत होती है वो हमेशा के लिए सुख शांति और आनंद में रह जाता है। तो एक भूमिका आएगी, ऐसा कहते हैं कि प्रारंभ में वो भूमिका आएगी। अगर विवेक का जीत हो गया फिर आगे का मार्ग सरल है, सहज है, फिर कोई कठिनाई नहीं है। ये बात है, इस तरह से यहाँ यह प्रश्न समाप्त होता है। आत्माना आधार है। त्रो अड़तालीस पुरुष आप लीधो क्या मने एम छे बे लखाव्या था एक साथ लखाव्यो तो ठीक है अड़तालीस लख आत्मानु स्वभाव सामर्थ्य अने ज्ञान स्वभाव